ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथाश्रम भागवतम सातवां स्कंद तेरवाध्याय श्लोक संख्या 19। कवि कल्पो निपुण दृक् चित प्रिया कथा समा लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तदीक्षितापि वा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कवि अत्यंत विद्वान कल्प दक्ष निपुण दृक् बुद्धिमान चित्र प्रिय कथा मन को भाने वाले मधुर शब्द बोलने में समर्थ समह समदर्शी लोकस्य सामान्य लोगों का कुर्वतः लगे हुए कर्म सकाम कर्म शेषे तुम लेटे रहते हो तत विक्षिता उन सब को देखते हुए अपि यद्यपि वा अथवा। अनुवाद। आप विद्वान दक्ष तथा सभी प्रकार से बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं फिर भी आप यहां पर निष्क्रिय लेटे हैं। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया और उसकी मुखाकृति से वह जान सके कि वह बुद्धिमान तथा दक्ष था। यद्यपि वह निष्क्रिय लेटा था अतः स्वाभाविक था कि प्रहलाद यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि वह वहां निष्क्रिय क्यों पड़ा है। ओम अज्ञानस्य निरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इस भगवत कक्षा में। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इस गृह चक्रवर्ती प्रभु। चक्रवर्ती प्रभु हम स्वागत करेंगे इस कौन जुहू में, ये बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं कर रहे हैं। आज वास्तव में इनको बैठाना चाहिए था व्यास आसन में, लेकिन संभव प्रभु जी बहुत विनम्र हैं और वो उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया। और आप सब भक्तों के आशीर्वाद से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। सिद्ध पुरुष का आचरण भागवतम में बताया गया है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने क्लास में 12 महाजनों का वर्णन कर रहे थे, तो आगे आगे उनके एक शिष्य बैठे थे, उन्हें प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद यू आर द 13th महाजन, और प्रभुपाद ने तुरंत दिया यू आर द 14th महाजन। यानी कि प्रभुपाद हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी महाजन बने, हम भी अपने जीवन को सिद्ध करें। तो सिद्ध पुरुष का आचरण कैसा है? तो इससे प्रसंग आता है कि सिद्ध पुरुष अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, वो अपने आप को छिपा कर रखते हैं, आसानी से एक्सपोज नहीं करते। और फिर इसी का आगे उदाहरण आया कि जब प्रहलाद महाराज पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे जीवों को तत्व से जानने के लिए, विशेषकर संत पुरुषों का संग पाने के लिए। प्रहलाद महाराज बचपन में जब उन्होंने हिरण्यकश्यप से इतनी प्रताड़ना सही और भगवान नरसिंह प्रकट हुए, उसके बाद उन्हें पूरा राज्यभार संभाला, और राज्यभार संभालने के बाद भी उनमें इतनी उत्सुकता थी भक्तों का संग करने के लिए। हालांकि उनको साक्षात नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में बिठाया था और वात्सल्य रस का आस्वादन किया था, उसके बाद भी प्रहलाद महाराज बहुत उत्सुक थे संतों का संग करने के लिए। इसलिए वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण पर निकले, और फिर वहाँ उनको एक ऐसे व्यक्ति मिले जो बिल्कुल पृथ्वी पर ऐसे लेटे हुए हैं गंदगी में, और बहुत मोटे थे दिखने में, लेकिन उनके शरीर से कांति निकल रही थी। और प्रहलाद महाराज समझ गए ये बहुत ऊंचे उच्च कोटि के वैष्णव हैं, भक्त हैं। तो इट टेक्स वन टू नो वन, इंग्लिश में कहा जाता है, एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान सकता है ना। यार चित्ते कृष्ण प्रेम कहे होते तार क्रिया मुद्रा विज्ञ ना मुचा। संसारिक दृष्टि से बहुत कोई विद्वान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो भक्तों को नहीं समझ सकता, भक्त ही भक्त को समझ सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज उस भक्त को समझ गए, और फिर उनसे उन्होंने बड़े रुचिकर प्रश्न पूछे कि आप यहां पर बैठे हैं, वो अजागर व्यक्ति के थे, कोई आ गया तो दे दिया उसने कुछ, खा लिया नहीं तो नहीं खाया। बोले आप तो यहाँ पर लेटे हुए हैं और आप कहीं जाते भी नहीं इधर उधर, फिर भी आपका शरीर इतना मोटा कैसा है? हा? आपका शरीर ऐसा मोटा है जैसे किसी भौतिकवादी व्यक्ति का जो इंद्र तृप्ति में लिप्त है, वैसे आपका शरीर इतना मोटा क्यों है? और फिर आप दिखने में विद्वान लगते हैं, जैसे आज का श्लोक है, बहुत निपुण है, बहुत बुद्धिमान है, आपके मुख से जो वाक्य निकलते हैं दूसरों के हृदय को प्रसन्न करते हैं, और आप समदर्शी हैं, फिर भी आप निष्क्रिय कैसे लेटे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे संसार में सारे लोग सकाम कर्मों में फंस कर दुखी हैं? आप कैसे लेटे हुए हैं? ऐसे संभव कैसे है? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज। क्यों पूछ रहे हैं? हम सबकी जानकारी के लिए, हम सबकी भलाई के लिए। तो ये जो अवधूत है, हम देखते हैं भागवत में और भी जगह वर्णन आता है ऐसे अवधूतों का, जैसे भागवत के पंचम स्कंध में भगवान ऋषभ देव जो कि स्वयं अवतार है, ऋषभ भगवान जी अपने जीवन के अपने अप्रकट होने की अंतिम अवस्था में बिल्कुल ऐसे अवधूत की तरह व्यवहार करते थे, और वो लेटे रहते थे नग्न अवस्था में, और जन साधारण पर पत्थर फेंकते थे, मलमूत्र फेंकते थे, और गंदगी में पड़े रहते थे। तो क्यों? बस वो पूर्ण रूप से उनका ध्यान बिल्कुल कृष्ण में लगा हुआ था, और बिल्कुल उनको देह का कोई भी ज्ञान नहीं था, है ना। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, देह स्मृति जहां तार, संसार बंधन कहां तार। जिसको देह का स्मरण नहीं, उसके लिए कोई संसार का बंधन नहीं है, पूर्ण रूप से बिल्कुल बॉडली प्लेटफॉर्म से परे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भागवत में तीसरे स्कंध में बताते हैं अपने तात्पर्य में देवहूति माता के प्रसंग में कि फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा मीन्स बॉडली एग्जिस्टेंस, एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स फॉरगेटफुलनेस ऑफ बॉडली एग्जिस्टेंस, है ना। अगर कृष्ण विस्मृति है तो देह स्मृति है, और कृष्ण स्मृति है तो देह विस्मृति है। अगर हम कृष्ण को याद करेंगे तो इस देहात्म योग से ऊपर उठ जाएंगे, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे, और जब कृष्ण को भूलते हैं तो देह में ही रहते हैं, है ना। तो ऐसे एक वर्णन आता है, कपिल भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं तीसरे अध्याय के 28वें, तीसरे स्कंध के 28वें अध्याय का 37वां श्लोक, उसमें बताया जा रहा है, उनका अनुवाद इस प्रकार है, अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका बोध नहीं होता कि यह भौतिक देह किस तरह हेल डूल रही है या काम कर रही है। जिस तरह की नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किए हुए है अथवा नहीं। जिस व्यक्ति ने नशा किया हुआ है उसको ध्यान नहीं रहता मैंने कपड़े भी डाले हुए हैं कि नहीं, इसी ढंग से जो पूर्ण रूप से सिद्ध जीव होते हैं उनको अपनी देह का कोई ज्ञान नहीं होता, पूर्ण रूप से देह से विस्मृत होते हैं कि कैसे हिलडुल रही है, कैसे कार्य कर रही है, वो अपने ही महिमा में अवस्थित होते हैं, सब महिमा अवस्थित हैं। उनको किसी से कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। ऋषभ भगवान के ऊपर लोग मल भी फेंक रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये भी जो अवधूत आराम से पड़े हुए हैं मिट्टी के अंदर, शरीर पे ऐसे लेटे हुए हैं, और कभी किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तो अपनी ही महिमा में ये अवस्थित है और बिल्कुल देह का ज्ञान नहीं है। तो ये है पूर्ण कृष्णा कॉन्शियस, पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित होना, है ना। तो जैसे कि हम लोग शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ने से पहले पूर्ण रूप से भौतिकता में लिप्त होता है साधारण व्यक्ति, हमें यह भी नहीं मालूम था कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर रहने वाले देही हैं, आत्मा है, अपने आप को ये शरीर ही समझते थे। तो एक बार हिजूरनाथ लोकनाथ स्वामी महाराज कह रहे थे, ऐसी अवस्था को बोला था देह योगी, हम देह योगी थे, अब देह योगी से हमें भक्ति योगी बनना है। भक्ति योगी मतलब कि आत्मा को पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगाना है, और पहले हम देह योगी थे, अपने आप को कितना निखारते रहते थे। एक बार अम्बोक लीला प्रभु अपने क्लास में बता रहे थे कि एक बार मल्टी स्टोरेड फ्लैट से बड़े, और वहां पे एक लिफ्ट थी, लेकिन लिफ्ट बहुत स्लो चलती थी, तो सब ने वहाँ के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन को बोला, भाई लिफ्ट बदलो, बड़ी स्लो चलती है। तो बोला लिफ्ट तो बदलना बड़ा महंगा है, तो बड़ा सस्ता सोल्यूशन उन्होंने निकाला, लिफ्ट में शीशा लगा दिया, तो बस अब स्लो किसी को नहीं लग रही थी, हर कोई अपने आप को निखार रहा था शीशे। तो ये हमारा देह योग, इतना ज़्यादा हम शरीर से आसक्त, शरीर को चमका के रखना और अपने मन के अनुकूल सारी बातें होनी चाहिए, इसी में ही हम सोचते रहते हैं पूरा, इसी में ही। तो ये देह योगी है, अब इससे बनना है भक्ति योगी। यानी कि प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवत गीता के आमुख में कि भगवत गीता का केंद्र बिंदु क्या है, कि सभी इंद्रियों को अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, कृष्ण के इंद्रियों की संतुष्टि के लिए उपयोग करना, अपनी संतुष्टि नहीं कृष्ण की संतुष्टि के लिए। और प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा वॉन्ट्स इट एंड कृष्णा डिमांड्स इट, कृष्णा को ये चाहिए और कृष्ण इसकी मांग करते हैं कि हम अपनी संतुष्टि के लिए कार्य ना करें, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करें। और यही गीता का केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है। तो ये है भक्ति योग। और अभी मैं हम देह योग में, तो कैसे ये सफर तय करेंगे, और देखें अगर इस देह में हम कितना लिप्त रहते हैं, लेकिन ये देह दुखों की खान है। कल एक भक्त से चर्चा कर रहे थे, सर से लेकर पांव तक चले, सर में दर्द रहता है, आंखों में चश्मा है, नाक में नजला है, दाढ़ों में दर्द है, गले में कफ है, छाती में कंजेशन है, पेट में गर्मी है, लीवर मंद है, टांगों में थकावट है ना, और मन तो काला है ही है, दूषित है, फिर भी हम देह योग, फिर भी हम चाहते हैं कि देह हमें खुशी देगा। असंभव, असंभव है, ये देह हमें दुखी दुख देगा। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है कि इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे, देह की विस्मृति लाए। जब हम शरीर छोड़ रहे हो, देह की विस्मृति हो, कृष्ण की स्मृति हो, अंते नारायण स्मृति, देह स्मृति नहीं, कि क्या हो रहा है, कि देह के बारे में कुछ नहीं हो सकता। ये देह पूरा पस भरा है, मल मूत्र से भरा हुआ है। और जो हम देखते हैं कि भगवान के सर्वोत्तम भक्त हैं गोपियां, गोपियां बहुत सुंदर हैं, गोपियां का आध्यात्मिक शरीर है, उनको सुमध्यमा बताया गया है। इस शरीर की, इस संसार की विश्व सुंदरी तो क्या, स्वर्ग लोगों की अप्सराएं भी गोपियों की सुंदरता का कुछ भी नहीं है। लेकिन जब गोपियां पूर्ण रूप से कृष्ण में आवेशित होता है उनका मन, तो अपने शरीर के बारे में सोचती भी नहीं है, उनका तो केवल एक ही ध्यान होता है कि कृष्ण के दिव्य देह को कैसे संतुष्ट किया जाए। इसलिए जब कृष्ण से मिलने जाती है तो ऊपर के कपड़े नीचे, नीचे के कपड़े ऊपर, केवल कृष्ण की संतुष्टि, अपने देह के विषय में कोई ज्ञान नहीं। और हम लोगों का देह पूरा मलमूत्र से भरा हुआ, दुखी दुख, और हम कितना उसमें लिप्त रहते हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है किसी ढंग से हम कृष्ण स्मृति करके देह विस्मृति करें, जैसे कि ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, इस अवधूत से मिल रहे हैं। तो हम इस कैसी अवस्था में पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां बोला गया था, कपिल भगवान ही बता रहे हैं कि जैसे एक शराबी व्यक्ति लेटा रहता है, उसको पता ही नहीं हमने कपड़े डाले कि नहीं डाले, तो हम भी ऐसी अवस्था में रहेंगे तो भक्त बन जाएंगे। ये कोई नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन नहीं है कि देह का हम ध्यान न रखें और भक्त कहलाएंगे, तो कैसे होगा फिर। तो ये जो अवधूत लेटे हुए थे सड़क पे ऐसे ही, तो अक्सर आम समाज के व्यक्तियों के लिए बिल्कुल बेकार के व्यक्ति थे, यूजलेस, कि ये समाज में इनका कोई भी उपयोग नहीं है। और हम देखते हैं कि साधारण भौतिकवादी लोग अध्यात्मवादियों को ऐसे ही समझते हैं कि ये भक्त लोग जो हैं, किसी काम के नहीं है, इनको कोई समाज में सफलता मिली नहीं, तो अब ये तथाकथित साधु बन गए, है ना। और कलयुग में ऐसा है भी, साधु लोग आश्रम में रहते हैं केवल खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए, और साधारण लोगों में यही धारणा है कि ये साधु लोग ऐसे ही हैं, सब कुछ होता तो है नहीं यहाँ के, बस थोड़ा बहुत नाचे कूदे, खाया पिया और फिर सो गए, है ना। ये लोग सुस्त हैं, इनका कुछ कुछ कोई भी इनका कोई अंदर से समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, है ना। कई बार हमारे भक्त लोग जब ट्रेनिंग में आते हैं या फुल टाइम ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करते हैं, तो उनके पेरेंट्स आके यही तो कहते हैं कि समाज के लिए कुछ करो, आप क्या करते रहते हो, हरे कृष्ण हरे, इसे समाज का कैसे उद्धार होगा, कुछ प्रैक्टिकल करो। तो अक्सर ये धारणा है कि साधु लोग बड़े आध्यात्मिक जीवन सुस्ती का जीवन है, और हमें इसके गीता का सार भी ऐसे लगा होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तो ये बड़ा सुस्त रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो। लेकिन हम देखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस तो पूरा एक्टिविटी है, फुल ऑफ एनर्जी, शक्तिपूर्ण, और इसे पूरा समर्पण है, और हमेशा यहाँ पे बहुत कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है, इसमें एक्टिविटी ही एक्टिविटी है, एनर्जी ही एनर्जी है, ये सुस्ती के लिए नहीं है। और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं दिस मूवमेंट इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। एक बार 1968 में श्रीला प्रभुपाद न्यू वृंदावन में गए, और न्यू वृंदावन उन्होंने बोला कि ये जो हिप्पीज लोग क्यों बने, हिप्पी वही व्यक्ति बने जो बिल्कुल सुस्त थे। आप देखिए, स्कूल में जाना या कॉलेज में जाना, पढ़ाई लिखाई करना, परीक्षा देना, उसके बाद मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना, ये बड़ा मेहनत का काम है। तो क्या किया, आगे ऐसे आराम से हिप्पी बन गए। तो प्रभुपाद ने बोला कि इस आश्रम में कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं रहेगा, ही मस्ट बी आउट। और प्रभुपाद ने भागवतमित कई तात्पर्य में लिखा है, आश्रम लाइफ इज नॉट फॉर लेजी पीपल, या खाने और सोने के लिए नहीं है, ये मेहनत करने के लिए है। आश्रम का मतलब है गुरु के हित के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने साफ साफ बोला कि ये मूवमेंट लेजी और क्रेजीज के लिए नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस ढंग से प्रोग्राम सेट किया पूरा कि सबके सब लोग पहले मॉर्निंग प्रोग्राम में उठे, और फिर उन्होंने बोला सबके सब पहले बाहर जाओ और फिर शाम को वापस आओ। तो ऐसे हिप्पी लोग जो कि दिन में 18-18 घंटे सोते रहते थे, अब वो 18-18 घंटे बाहर जाके पुस्तक वितरण करते थे, पूरा इतना पूरा उन्होंने प्रभुपाद ने उनका जीवन बदल दिया। क्यों, प्रभुपाद ने उनको समझाया कि ये जो जीवन है, जैसे हम देख रहे थे कल प्रभुपाद का एक वीडियो, तो प्रभुपाद अमेरिका में गए सैन फ्रांसिस्को में, और वहां बोल रहे थे माय डियर फ्रस्ट्रेटेड अमेरिकन यूथ। तो सीधा बोल रहे हैं आप फ्रस्ट्रेटेड, और प्रभुपाद बोले आई हैव कम हियर टू मेक हिप्पीज इनटू हैप्पीज, यू नो। तो अक्सर हमें ये गलत फहमी है कि जितना ज्यादा सोएंगे, जितना ज्यादा शरीर को आराम देंगे, उतने हम खुश हो जाएंगे। हिप्पी लोग पूरा आराम देते थे, नशे में रहते थे। प्रभुपाद ने बोला हिप्पी से हैप्पी बनाना है, और हैप्पी कैसे बनाया, खूब उनसे काम करवाया, खूब उनसे सेवा करवाई। तो ये कुछ गलत धारणाएं पड़ी हुई है आध्यात्मिक जीवन को लेकर, कि आध्यात्मिक जीवन सुस्ती का जीवन है, निष्क्रियता का जीवन है, निष्क्रिय शरीर है और आत्मा हमेशा ही सक्रिय रहती है। प्रभुपाद कहते हैं जितने भी निराकारवादी हैं अव्वल दर्जे के सुस्त लोग हैं, है ना, पूरे सुस्त, कुछ नहीं करना, कौन भगवान को भोग लगाए, कौन भगवान का श्रृंगार करे, कौन भगवान की आरती करे, इसलिए भगवान निराकार, खत्म, आप भी खुश मैं भी खुश, और ब्रह्म में लीन हो जाओ बस। श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, एक बच्चा माँ के घर से बाहर निकला और देखा रे बड़ा काम करना पड़ेगा यहाँ, तो बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्कूल में जाना पड़ेगा, वापिस माँ के घर में घुस गया। ये है निराकारवादी, वापिस भाई क्या है, कौन इतनी मेहनत करेगा, है ना। तो ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है ये, और हम लोग भी ऐसे भावना से आते हैं क्योंकि देह योगी है, पूरे देह को आराम चाहिए हमें, और जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े तो बड़ा कष्ट होता है, हमें बहुत कष्ट होता है, परेशान हो जाते हैं, याद आती है देह का स्मरण होता है, हमारे में देह क्या हो रहा है, इतना बहुमूल्य देह है मेरा, कुछ हो ना जाए इसको, हम इतना ख्याल रखते हैं। तो इसलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो आलस्य है ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी हमें आगे रोकने बढ़ने से रोकती है आलस्य। ये क्या आलस्य है, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने का, सर्दियों में सुबह से उठने की इच्छा ही नहीं होती, कितने आर्गुमेंट्स मन हमें देता है कि थोड़ी देर और सो जाओ, थके हुए हो, बहुत कमजोर हो रहे हो, है ना, रात को लेट सोए हो, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए आलस, फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारने के लिए आलस, अगर हम हमारा मूड ऑफ है भगवान के सामने नाचने की आलस, हम देखें कितना आलस हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और ये ऐसा रोग है कि संक्रामक है, कंटेजियस। आप बड़े उत्साह में लेकिन दूसरे बात को खराटे मारते हुए देख रहे हैं, आपको लगे मैं बेवकूफ हूं यार, ये कितना आनंद उठा रहा है ना, थोड़ा मैं भी रस ले लेता हूं यार, ये देखो कितना सो रहा है आराम से, मैं रात को भी लेट सोया तो सो रहा है आराम से, बड़े मस्त है तो, हाँ तो हम सो जाएंगे। ये संक्रामक है, फैलता है खूब। आपने उत्साह पूर्वक किसी मित्र को फोन किया, चल रहा है मंदिर, छोड़ना है यार, क्या करना है मंदिर, यहाँ चल आराम से देखेंगे, देखता हूँ बताता हूँ, उसका भी उत्साह डाउन हो जाता है ना। अगले पूछते प्रभु जी आप पाए नहीं, हाँ प्रभु जी मैं उनको फोन किया, वो थोड़े से ऐसे हो गया, बस मेरा भी उत्साह खत्म हो गया है ना। तो ये आलस है और ये संक्रामक है। और हम सब भक्तों का कर्तव्य है कि हमारे प्रीचिंग मूवमेंट है, हमें प्रीचिंग अपने उदाहरण से करनी है। तो इसलिए अगर भक्ति सुस्त हो गया तो हम साधारण जीवन को कैसे भक्ति में जोड़ सकते हैं। हर भक्त का ये कर्तव्य है कि वो दूसरे भक्त को प्रचार करे। नए लोगों को प्रचार करना बड़ा आसान है, हमारे प्रभुपाद की फिलॉसफी, कृष्णा भानंद की सिद्धांत इतना आकर्षक है, कीर्तन इतना आकर्षक है, प्रसाद इतना आकर्षक है, वर्चग्रह इतने आकर्षक है, तुरंत आकर्षित हो जाएगा। लेकिन भक्त में भक्ति में जब वो जुड़ गया, उसको इसी ढंग से उत्साहित रखने के लिए एक दूसरे भक्त का उत्साह कार्य करता है। ये प्रचार है अपने उदाहरण से, हम इतने उत्साहित हों, हमारे में इतना त्याग की भावना हो, इतना समर्पण हो, इतना हम मेहनती हो कि दूसरा भक्त भी उत्साहित रहे। ये सबसे सुंदर प्रचार है। भक्तों को प्रचार करना बहुत कठिन है, क्योंकि भक्तों को प्रचार करने के लिए हमें उनको दिखाना पड़ेगा फिलॉसफी इन एक्शन, वॉकिंग ओवर टॉक। बोलने का बोलकर तो हम किसी को भी आकर्षित कर लेंगे नए व्यक्ति को, लेकिन जब वो भक्ति में जुड़ जाता है फिर वो देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम एक दूसरे को उत्साहित रखें, और इसके लिए जो हमें अपने इस आलस्य से ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये हम सबका ये कर्तव्य है। तो ये आलस की बीमारी बहुत खतरनाक है, ये हमें आध्यात्मिक मृत्यु की तरफ ले जाती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सेवक ठाकुर महाराज कहते हैं, मैं एक कहानी सुनाते हैं, आप सबने सुना होगा, कि दो सुस्त व्यक्ति एक ही कमरे में रहते थे, सर्दी का मौसम था, दोनों सो रहे थे आराम से, सोना तो उनका पास टाइम है, आराम से फेवरेट पास टाइम सो रहे हैं। और तभी उस कमरे में आग लग गई, आग लग गई, आग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब सर्दी का मौसम ऐसे ही है और आग लग गई, बड़ा अच्छा लग रहा है उनको। धीरे धीरे एक सुस्त व्यक्ति को लगा कि कुछ हो रहा है पीठ में, तो उसने बोला बीबी, बीबी का मतलब बैक बर्निंग, पीठ जल रही है। तो दूसरा जो दूसरा जो व्यक्ति ले सुस्त व्यक्ति, वो भी सो रहा था, तो उसको भी लगा थोड़ा बहुत गर्मी है, बोलते एम ए एम ए मूव असाइड पीछे हो जाओ यार, गर्मी हो पीछे हो जाओ थोड़ा सा। तो दोनों एक दूसरे ऐसे बोलते रहे बेबी और एम ए, और आग भड़कती रही और बुरा बहुत जबरदस्त आग लग गई। और उनको लगा कुछ गर्मी हो गई है, कुछ आसपास रोशनी सी लग रही है, लगता है सुबह हो गई है और सूर्य निकल आया है। तो एक सुस्त ने दूसरे सुस्त को बोला भाई लगता है सूर्य निकल आया है, देखो सूर्य की रोशनी कितनी गर्मी दे रही है। उसने बोला यह बहुत मुश्किल है आंखें खोलना, रहने दो ना ऐसे जो है। तो ऐसा करते करते आग इतनी तेज भड़के कि दोनों को उसने जला के राख कर दिया। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कोई भक्ति में अगर है और ऐसी सुस्ती कर रहा है, वो उसकी भक्ति भी जलकर राख हो जाएगी। दोज हु आर डिवोटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेजी। जो कि कृष्णा भावनावाहिक में आ रहे हैं वो ये दुस्साहस नहीं कर सकते कि वो आलस को स्वीकार करें या सुस्त हो जाए। भक्ति सिद्धांत महाराज आगे कहते हैं कि दोज हु आर लेजी दे आर लाइक एनिमल, अगर कोई सुस्त है तो वो पशु के समान है, मृत व्यक्ति के समान है। भक्ति में पूरा उत्साह, बिना एक प्रचारक बिना उत्साह के प्रचार कैसे कर सकता है, और उसके अपने उसको अपने उदाहरण से प्रचार करना होगा, केवल बोलने मात्र से नहीं, उदाहरण से दिखाना होगा। अगर भक्ति सुस्त हुआ तो आगे क्या होंगे। श्रील प्रभुपाद जी को हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी एक बार लॉस एंजलिस में गए, और लॉस एंजलिस में गए तो प्रभुपाद को बुखार हो गया, और जब बुखार हो गया प्रभुपाद ने भागवतम क्लास देने थे, तो भक्तों ने बोला प्रभुपाद रहने दीजिए आप क्लास में मत आइए। प्रभुपाद ने बोला नहीं मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि अगर आज मैं भागवतम क्लास में नहीं जाता तो आगे ये बहाना बन जाएगा लोगों के लिए कि थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो भागवतम क्लास मिस कर दो। तो मैं गया प्रभुपाद को, उनके भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद आपको पालकी में ले आते हैं, उठा के ले आते हैं। प्रभुपाद नहीं, मैं चल के जाऊंगा, ये बहुत मेरे लिए एम्बेरेसिंग होगा। फिर प्रभुपाद नीचे गए मंदिर में तो उनका गले में बहुत खराब था, प्रभुपाद बोल नहीं पाए। प्रभुपाद व्यास आसन पे बैठे, उनके एक शिष्य ने क्लास दी और प्रभुपाद पूरी क्लास में बैठे रहे। पर्सनल एग्जाम्पल। कुंभ मेला में थे प्रभुपाद, सर्दी का मौसम था, शिष्य लोग उठकर नहा नहीं रहे थे। आप गए कुंभ में, अलाहाबाद में गए कभी? जनवरी के महीने में अक्सर होता है और बहुत ठंड होती है, और उसमें उठ के नहाना नलके के नीचे बहुत बड़ी तपस्या है। और प्रभुपाद 75-76 साल की उम्र में उठते थे और नहाते थे ठंडे पानी से बाहर जाके नलके में के नीचे, तो सारे शिष्यों को शर्म आई और उन्होंने भी उठना जल्दी शुरू किया। तो प्रचारक अपने उदाहरण से ही उत्साहित कर सकता है, और ये हर भक्त का कर्तव्य है कि एक दूसरे के लिए वे उदाहरण स्थापित करें। हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। अगर हम ढीले पड़ गए तो ये जो ढीलापन है, ये जो सुस्ती, ये संक्रामक है, ये फैलेगी, पूरे समुदाय में फैलेगी, है ना। गुरु भी सोचते हैं, प्रेसिडेंट भी सोचते हैं, सब बोले ठीक है, जो होगा ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक एक मंदिर में हमारे भक्त गए सुबह सुबह, मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा होता था सर्दियों के मौसम में, जैसे मंगल आरती खत्म हुई हर एक भक्त को एक गद्दा मिल जाता था और वो कंबल लेके आते थे, आराम से दीवार के सहारे सब बैठ के कंबल ओढ़ के आराम से समाधि में सब चले गए, और जब दर्शनार्थी का शंख बजता था सब फिर उठते थे फ्रेश एकदम बढ़िया। तो ठीक है, एक कल्चर सेट करने की बात है। तो एक कल्चर सेट होता है कि सब लोग बहुत ही बहुत सक्रिय हैं, मेहनती हैं, कर्मठ हैं, तो एक दूसरे को देखकर हमें उत्साह मिले, तो ये हम सबका कर्तव्य है। लेकिन अभी हम देह योगी से भक्ति योगी हैं, और क्योंकि प्रारंभ हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में तो आश्रम जीवन होता था। 5 साल की आयु में गुरुकुल में गए और वहां पर ट्रेनिंग मिलती थी, शिष्य लोग स्वस्थ रह नहीं सकते थे। हम देखते हैं कृष्ण बुक में सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण और बलराम थे, और कृष्ण और सुदामा गए थे वन में लकड़ी काटने के लिए अपने गुरु के लिए, स्वयं कृष्ण भी जाते थे लकड़ी काटने के लिए। तो ऐसे ऐसे उनको कार्य करने पड़ते थे, और उनको ट्रेनिंग मिलती थी सफाई में, स्वच्छता में उनको प्रशिक्षण मिलता था, कैसे संवेदनशील रहें उनको प्रशिक्षण मिलता था, कैसे अपने इंद्रियों को संयमित करें, इंद्रियों का दमन करें। तो इस ढंग से जो प्रशिक्षण मिलता था तो ब्रह्मचारी आश्रम में उसके आलस रहने की कोई भी संभावना नहीं थी, और अगर वो बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो आलस नहीं होता था। लेकिन अब हम देखते हैं ना कोई ऐसा ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग है, तो फिर गृहस्थ आश्रम का ट्रेनिंग तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो ब्रह्मचारी आश्रम में अब किसी भी ढंग का जो है, हम किसी भी अवस्था में जुड़े हैं, ये हमारा कर्तव्य है ब्रह्मचारी आश्रम में रहने वाले भक्तों का, कि अपने कांग्रेशनल डिवोटीज के लिए एक बहुत ही आदर्श उदाहरण स्थापित करें। ब्रह्मचारी आश्रम शुड शो द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन, तभी जो कांग्रेशनल भक्त उनको लगेगा कि ये लोग बिल्कुल निस्वार्थ होकर कितनी मेहनत कर रहे हैं। और साथ में जो ब्रह्मचारी आश्रम में भक्त हैं उनको गृहस्थ आश्रम देखकर उत्साहित होना चाहिए, कि जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं ये लोग अपना काम धंधा भी करते हैं, घर में डीटी वर्शिप भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, कितना कम सोते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, तो उनको ऐसा उदाहरण स्थापित करना चाहिए, तो उससे ब्रह्मचारियों को उत्साह मिलेगा। तो इस ढंग से हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसे पूर्ण रूप से आश्रम जीवन नहीं है, तो इसलिए हमारी प्रवृत्ति है बार बार आलस की तरफ जाने की। जितना ज्यादा हमारा देहात्म बुद्धि होगा उतना ज्यादा हमारे में आलस्य होगा, जितना ज्यादा हम देहात्म बुद्धि से ऊपर होंगे उतने ज्यादा हम भक्ति में सक्रिय होंगे, और अभी तो अवस्था है नहीं ऐसे कि हम कैसे करें। इसलिए इस संकीर्तन आंदोलन में प्रभुपाद कहते हैं ये पुशिंग मूवमेंट है, पुश की आवश्यकता पड़ती है, एक आध्यात्मिक धक्का, कोई धक्का मारने वाला हो हमें, है ना। बार बार रुक जाते हैं फिर कोई धक्का मारता है, बार बार रुक जाते हैं फिर कोई धक्का मारता है, पुश करना चाहिए। तो कोई ना कोई पुश करता रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये अति आवश्यक है। हम देखते हैं भगवत गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को पुश किया, है ना। अर्जुन तो आलस्य स्वीकार कर रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, और कई बार ये आलस्य नैतिक स्तर से बड़ा अच्छा लगता है, है ना, कि बिल्कुल ठीक लग रहा था नैतिक स्तर से, भाई बंधुओं से क्या लड़ाई लड़नी, जंगल में जा रहा है कितना भला मानस है, देखो अपना राज्य भी छोड़ रहा है। नहीं, कृष्ण ने बोला नहीं, क्लैब्य मास संगम पार्थ कुतः, ये तुम्हारे में कहां से नपुंसकता आ गई, है ना। शुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तपा, ये हृदय की छोटी कमजोरी को त्याग कर खड़े हो लड़ाई करो, बोला ये तुम्हें शोभा नहीं देती। तो फिर अर्जुन की आंखें खुली। इसी रख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ने जब संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करना था अपने भक्तों को पुश किया, एक दिन संकीर्ण अद्वैताचार्य शिवा सांगर में महाप्रभु गए और बोले क्या है मनुष्य जीवन सोने के लिए मिला है क्या, रात भर हम सोते रहते हैं, आज से पूरी रात संकीर्तन हरि बोल, बस पूरी रात संकीर्तन होता था, कोई सोने का समय नहीं, सोने के लिए थोड़ी आए हैं, कीर्तन करने के लिए आए हैं। तो महाप्रभु ने कीर्तन आंदोलन ऐसे आरंभ किया। फिर गुंडिचा मार्जन में महाप्रभु ने सबको उत्साहित किया अपने उदाहरण से कि कौन कितनी धूल इकट्ठी करके लाएगा, है ना। और जो लोग थोड़े स्वस्थ थे, सही ढंग से सफाई नहीं कर रहे थे, महाप्रभु जाते थे उनको थोड़ा प्रेम से डांटते थे। और फिर जब महाप्रभु ने करके दिखाया, खाली ऑर्डर नहीं दिया, इंस्ट्रक्शन नहीं दी, खूब सबसे ज्यादा गंदगी खड़ी उठा के लाए कि देखो कितनी गंदगी हमने इकट्ठी की। महाप्रभु सब लेके आएंगे, देखें किसने कितनी ज्यादा गंदगी इकट्ठी की। तो महाप्रभु भी पुश कर रहे हैं। इसी से ढंग से देखते हैं भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज ने किसको पुश किया, शिला प्रभुपाद को। पहले ही मीटिंग में बोल दिया, अरे तुम पढ़े लिखे युवक हो क्यों नहीं जाते बाहर और चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते। बस वो तो शुरू हो गया, उनके दिमाग में वायरस चला गया प्रभुपाद जी के, सोचने लगे बात तो बिल्कुल ठीक है, क्या करना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद ने सारी प्लानिंग करना शुरू की। और इसी ढंग से प्रभुपाद ने जब मूवमेंट शुरू किया, क्या पुश किया प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को ऐसे हिप्पीज को इतना जबरदस्त धक्का मारा कि बस वो तो एकदम कल वो बता रहे थे, हमने वीडियो देखा, बोले प्रभुपाद ने हमें ऐसा बना दिया कि अगर हम माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाते तो हम थकते ना, इतना एनर्जी प्रभुपाद ने डाल दिया। और प्रभुपाद उनको पुश करते रहते थे, जितना भी कर ले प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद उनको फिर धक्का मारते, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद ने जब मायापुर का मंदिर बन रहा था तो प्रभुपाद बहुत जोर दे रहे थे, जल्दी से भक्तों के रहने के लिए बिल्डिंग बनाओ। और बेचारे कर रहे थे काम, तो उनके जो मैनेजर आए कोई ना कोई वो बहाना दे रहे थे, प्रभुपाद ये नहीं हो सकता, प्रभुपाद ये नहीं हो सकता। फिर प्रभुपाद ने उनको इंग्लिश में पोयम सुनाई, बिग बिग मंकी बिग बिग बैली सिलोन जंपिंग मेलन कैली। तो समझ नहीं आया किसी को, आपको समझ में आया? नहीं आया। बोले आप सब अमेरिकन हो, बिग बिग मंकी बड़े बड़े बंदर हो हनुमान जी की तरह, बिग बिग बैली बहुत बड़ा पेट है आपका, सिलोन जंपिंग जब बोलो समुद्र को पार करो तो कोई नहीं, मेलन कैली सबके सब उदास हो गए हो, खाली हनुमान जी क्रॉस कर पाए, आप जैसे कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो प्रभुपाद उनको ऐसा पुश करते थे, है ना। और जब ये मायापुर का मंदिर बन रहा था तो तमालकृष्ण महाराज जी और तमाशन गोस्वामी महाराज, जयपता का महाराज बहुत मेहनत कर रहे थे। उस समय 1970 में बिल्डिंग मटेरियल आसानी से नहीं मिलता था, सरकार से परमिट लेना पड़ता था, सीमेंट के लिए, पत्थर के लिए, सरिये के लिए, बालू के लिए मिलता ही नहीं था। और अगर मिल गया सरकार से परमिट, फिर उसको वैगन चाहिए होते थे ट्रेन के, उसमें लोड कराने के लिए, तो वैगन भी नहीं होते थे, बड़ी मार धार करने के बाद। और फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की, वहां पे बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिलता था, बिल्डिंग क्या बनाएंगे बेचारे। वो विदेशी भक्त इतनी मुश्किल से सरकार के पचड़ों से निकल के उन्होंने सरिया अरेंज कर लिया, सीमेंट अरेंज कर लिया, पत्थर अरेंज कर लिया। और वहां पे इतनी चोरियां होती थी, भक्त लोग इसके ऊपर सो जाते थे, अंदर नहीं सोते थे बिल्डिंग में, उसी मटेरियल के पत्थर के ऊपर, सरिये के ऊपर सो जाते थे चारों डाल के कि इसकी रक्षा करनी है। इतना सेक्रीफाइस कर रहे थे, उन्होंने सारे बिल्डिंग मटेरियल की फोटो खींचकर भेजी प्रभुपाद को कि प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद बोले वेयर इज अ बिल्डिंग, फोटो भेज रहे हो, सीमेंट की फोटो लेके मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग कहाँ है। फिर ये नहीं बोले, तुम मेरे से पैसे तो ले जाते हो। तमालकृष्ण महाराज को बोला क्यों बैठे हो भाई वहां पे, फंड इकट्ठे करो, मेरे पास पैसे लेने आते हो। फिर बोले तुम तो सबके सब विधवा के समान हो, वहीं रह लो, मैं पैसे कमा के तुम सबका पालन करूंगा। क्या डांट है बताओ, क्या जबरदस्त पुशिंग है, बेचारे तिलमिला जाते होंगे। और भक्त लोग फिर जुड़ते थे, है ना। इसी ढंग से तब एक बार प्रभुपाद जी ने पूरे भारत का जीबीसी क्षेत्र को बांटा अलग अलग क्षेत्रों में। तो महाराज महाराज से मुझे क्या चाहिए, बोले भारत में मैं जीबीसी बनूंगा। बोले बन जाओ। उस समय जब जीबीसी बनना होता था और साथ में वो सन्यासी भी थे, तो जब सन्यासी कोई बनता था उसको अपने जीबीसी के पद से पीछे होना पड़ता था। तमाक्षा महाराज सन्यासी थे, वो सन्यासी हैं तो प्रचार भी करना है भ्रमण करके, और साथ में जीबीसी उसकी भी जिम्मेदारी उठानी है। तो कुछ समय के बाद वो आए प्रभुपाद जी के पास और रो रहे थे बिल्कुल, प्रभुपाद क्या हो गया है, हम ओवर बर्डन, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, प्रचार करूं, मैनेजमेंट करूं, क्या करूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो रो रहे हैं, प्रभुपाद हंस रहे हैं। बोले प्रभुपाद आप हंस क्यों रहे हो, बोले आप कितने सुबह, आपने तो मांगा था ये जीबीसी, अब आपको दे दिया, और आप इतने सौभाग्यशाली हो कि माया के लिए कोई स्पेस ही नहीं है कि माया एंटर कर सके। इसलिए प्रभुपाद बहुत पुश करते थे। लेकिन प्रभुपाद के इस धक्के को उनके शिष्य क्यों स्वीकार कर लेते थे, क्यों स्वीकार करते थे? प्रभुपाद में उनके प्रति बहुत प्रेम था, प्रभुपाद के हृदय में करुणा थी जैसे कि यहां प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इस अवधूत को कि आप सब देख रहे हो पूरे संसार में लोग सकाम कर्मों में लिप्त हैं, आप कैसे बैठे हुए हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति, निपुण व्यक्ति, समदर्शी व्यक्ति और जिसके वाक्य सबको बहुत मधुर लगते हैं सुनने में, वो आम व्यक्तियों को दुख की अवस्था में कैसे देख सकता है, वो निष्क्रिय रह ही नहीं सकता। तो ये प्रभुपाद जी की करुणा थी हृदय की कि वो पूरे संसार का उद्धार करना चाहते थे और इसके लिए वो अपने शिष्यों को एक उपकरण बना रहे थे। तो इसलिए उनके भक्त लोग उनकी हर आज्ञा को स्वीकार कर रहे थे कि प्रभुपाद उनको पुश कर रहे थे अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाने के लिए, और इसलिए सारे के सारे भक्त उत्साह से उसमें जुड़ते भी थे। तो इसलिए हम लोगों के जीवन में भी ऐसे कोई भक्त होने चाहिए जो हमें ये धक्का मारते रहे और उस धक्के को हमें स्वीकार करना चाहिए। आलस्य का एक और कुप्रभाव पड़ता है कि हम अवज्ञा करनी शुरू कर देते हैं, हम डिसओबीडियंट हो जाते हैं। आलस के कारण हम वैष्णव सदाचार का सही ढंग से पालन नहीं करेंगे, आलस के कारण हम स्वच्छता नहीं रखेंगे, आलस के कारण हमें कोई सेवा मिलती है तो हम सेवा टालने का प्रयास करेंगे, उसको दे देंगे। आलस्य के कारण हम गुरु की आज्ञा की अवज्ञा भी करते हैं, डिसओबीडियंस। इसलिए हम देखते हैं कि जो हिप्पीज थे वो परिकाष्ठा थी आलस की भी और डिसओबीडियंस की भी। वो हिप्पी जो कल्चर ऐसा था कि कोई वो किसी से भी कुछ भी बात सुन नहीं सकते थे कि कोई उनको आदेश भी दे दे, संभव ही नहीं है। ये खाली प्रभुपाद का प्रेम था जिससे वो प्रभावित हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभुपाद क्या फिलॉसफी बोल रहे हैं, बस प्रभुपाद के हृदय का प्रेम ने उनको आकर्षित किया। तो हम कोई हमें आध्यात्मिक रूप से पुश करता है तो हमें उसको सहना चाहिए और उसे आगे बढ़ना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और जो भक्त पुश कर रहा है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि खाली पुश से काम नहीं चलेगा, प्रेम भी होना चाहिए, है ना। और उसको खुद अपने जीवन में खुद वो सक्रिय हो, ऐसे नहीं मैं वरिष्ठ हूं मैं तो आगे दूंगा पुश कर दूंगा और आगे आप करो, मैं खुद आलसी हूं आपको मैं नहीं, मुझे भी सक्रिय होना पड़ेगा तब जाके वो पुश काम करेगा। शिला प्रभुपाद खाली बैठे नहीं रहते थे, प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन में बैठ के आराम से जप करते रहते, सकृतियां दिखाई, इतने बीमारी की अवस्था में प्रभुपाद हमेशा सेवा में लगे रहे, तो इसलिए उनके शिष्य कैसे चुप बैठ सकते थे, लगे रहते थे पूरा रात दिन। तो इसलिए हमें ये बात को समझना है यार, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की सफलता इसके बिना हो ही नहीं सकती। एक आलसी और एक डिसोबीडियंट क्या बोलेंगे, अवज्ञा करने वाला भक्ति कैसे कर सकता है। आश्रम जीवन का अर्थ ही है कि बिल्कुल सक्रिय रहना और पूरा ओबीडियंट रहना, आज्ञाकारी रहना। ये बिना इसके आश्रम जीवन तो है ही नहीं, गृह में भी जीवन है, अपनी मर्जी से जो मर्जी करना और स्वस्थ रहना। तो आश्रम जीवन चाहे ब्रह्मचारी आश्रम है, ग्रस्त आश्रम है, ग्रस्त आश्रम में थोड़ी सी छूट ज्यादा है ब्रह्मचारी आश्रम से, लेकिन आलस्य और अवज्ञा करना तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए प्रारंभ की अवस्था में ये पुश चाहिए, और जब ये पुश लगातार मिलता रहेगा फिर बाद में क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम बिना पुश के अपने आप भागेंगे, है ना। हम देखते हैं सनातन गोस्वामी जी वृद्ध अवस्था में भी गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, और जब ऐसे कोई आलस्य नहीं तो स्वयं कृष्ण प्रकट हुए उनके सामने, अरे भैया मत करो ऐसे, लो ये लो, कृष्ण ने उनको शिला दी गोवर्धन शिला की, इसकी परिक्रमा कर लो, गोवर्धन परिक्रमा के समान माने जाएंगे। रूप गोस्वामी जी ने इतने ग्रंथ लिखे लेकिन वो आलस्य नहीं हुए, वो फिर भी ढूंढते रहे, मेरे को महाप्रभु का आदेश है कि अर्च विग्रहों को प्रकट करना है, और गोविंद देव जी प्रकट नहीं हो रहे थे, वो बहुत निराश थे। हालांकि उनको इतनी सफलता मिली हुई थी, किसने ग्रंथ लिख दिए उन्होंने, लेकिन वो ढूंढ रहे थे कहां पे वो गोविंद जी का विग्रह है। तो ढूंढ रहे थे, सब ब्रजवासियों के घर घर में जा रहे थे कि कैसे हम अर्चविग्रहों को स्थापित कर सकते हैं, और फिर भगवान आए ग्वाला बन के और बोला कि वहां पे उस टीला है, वहां पे गाय आती है, वो अपना दूध देती है, और फिर उस टीला को खोदा गया तो गोविंद देव के विग्रह मिले। तो किसी भी अवस्था में आलस नहीं कर सकते हम, तो क्या है अब उनको मोटिवेशन, कोई करने वाला पुश नहीं है, महाप्रभु ने उनको भेज दिया जाओ वृंदावन में, वो स्वतः ही सेल्फ मोटिवेटेड है। अब हम देखते हैं प्रभुपाद जी के शिष्यों को, प्रभुपाद के शिष्यों को कहां से मोटिवेशन मिल रहा है, प्रभुपाद की वाणी से, बस उनको कोई आलस हम देखते हैं। प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं, वरिष्ठ शिष्य, इतनी बीमारी की अवस्था में परम पूजनीय जयप्रताप स्वामी महाराज, परम पूजनीय राधा गोविंद स्वामी महाराज, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, ऐसी अवस्था में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई आलस्य नहीं है, एक बार प्रणाम हम गोपाल सिंह गोस्वामी महाराज जी के साथ थे, बहुत थके हुए थे, बोले मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। तो उनके सेक्रेटरी बड़े खुश हो गए, रेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं महाराज, वेरी गुड। वो तो बोलते रहते महाराज थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो। 15 मिनट बाद फिर उठ गए, चलो। बोले महाराज रेस्ट तो कर लीजिए। हो गया, अरे महाराज आपने जब फोन पे बात की थी, महाराज ने बोला जब मैं अपने गुरु भाई से फोन पे बात कर लेता हूँ वही मेरे लिए रिलैक्सेशन है। देखो यार रिलैक्सेशन के स्टैंडर्ड है, हमें तो पूरी जब तक पूरे 2-3 घंटे की खुली नींद नहीं चाहिए तो हम तो आगे एक्टिव नहीं हो सकते। तो आलस का स्कोप ही नहीं रहता फिर। सो मच टू डू, सो मच टू डू। इतने सारे लोग सकाम कर्मों में जुड़े हुए हैं, वो दुखी हैं, उनको कौन ज्ञान देगा? अज्ञानता के कारण लोग सभी सकाम कर्मों में जुड़े हैं। कैसे सकाम कर्म में? वो सोचते हैं कि अपने शरीर की खुशी के लिए हम कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने, भगवान ने सृष्टि की रचना ऐसे की है, अगर अपने सुख के लिए हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसका परिणाम हमेशा दुख होगा। छोटी सी बात है, समझ में नहीं आती हमें। ये ज्ञान कौन देगा? भक्त लोग देंगे। तो इसलिए कितने प्रचार की आवश्यकता है, और जब प्रचार कर रहे हैं तो खुद भी हम सकाम कर्म ना करें। तो इसलिए इस देह स्मृति से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और कृष्ण स्मृति को बढ़ाना पड़ेगा। जितनी मात्रा में कृष्ण स्मृति बढ़ाएंगे उतनी मात्रा में देह स्मृति कम होती जाएगी। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हम समराइज करते हैं कि अब देह स्मृति को कम कैसे करें और कृष्ण स्मृति को कैसे आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हमारे जीवन में कोई भक्त होना चाहिए जो हमें पुश करता रहे। दूसरा, हमें एक उपकरण बनना है प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की इस करुणा को बांटने के लिए। ये प्रीचिंग मोमेंट है, हमारा बड़ा सौभाग्य है। अभी हम पूरे वर्णाश्रम का पालन नहीं भी कर पा रहे, लेकिन देवी वर्णाश्रम है, इसमें किसी भी अवस्था से हम शुरू कर दें श्रवण कीर्तन का ये प्रोसेस, तो हम इसमें सफलता पा सकते हैं। तो उपकरण बनेंगे इस पूरे कंपैशन को, इस करुणा को फैलाने के लिए, जन साधारण में चैतन्य महाप्रभु का संदेश देने के लिए। जीव जागो गोरा चांद बोले। जब दूसरों को जगाएंगे तो सबसे पहले कौन जागेगा? मुझे जागना पड़ेगा। सोते सोते मैं दूसरों को जगा नहीं पाऊंगा, लेकिन संगीत वालों में इतनी शक्ति है कि कई बार सोते सोते भी दूसरे व्यक्ति को जगा देते हैं। लेकिन हमें इसका गलत फायदा नहीं उठाना, खुद जागे और दूसरों को जगाएं। जियो और जीने दो, ये असली जीवन है। और कई बार हम क्या करते हैं कि और जो भी हम देह के स्तर के कार्य करें सबके सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हमारा आहार कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमारी निद्रा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मैथुन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम अपना बचाव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, पूर्ण रूप से सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए न। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुःखः। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, वो भक्ति नहीं कर सकता, वो योगी नहीं बन सकता। तो हम लोग अपने आप को नियमित जीवन जिए, रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल, ये बहुत आवश्यक है। कई प्रारंभिक अवस्था में कई बार क्या होता है कि हम लोग, एक तो होती है तमोगुण की भक्ति, एक होती है रजोगुण की भक्ति। तमोगुण की भक्ति में बहुत ढीला ढाला भक्ति करेगा, सुस्ती के साथ दीर्घ सूत्री, और रजोगुणी भक्ति उसके अंदर आक्रोश होगा, द्वेष होगा, बदले की भावना होगी, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा होगी, इससे वो भक्ति करता है। तो कई बार रजोगुणी भक्त बहुत तीव्र हो जाता है, इतना तीव्र हो जाता है कि अपनी साधना अपना सब कुछ वो पीछे कर देता है ना। एक चुटकुला याद आ रहा है, पिछले दिनों कुछ सुना था कि बहुत एक बड़ा समूह होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वस्थ व्यक्तियों का समूह होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बहुत बड़ा समूह है, बड़े बड़े वहां पे आलसी लोग होते हैं। तो ऐसे दो आलसी मार्केट में खड़े हैं और देखते हैं कि उनके एसोसिएशन का जो चेयरमैन है बड़े भरी मार्केट के बीच में से एक बड़ी गाड़ी में 120 की स्पीड से निकल गया। बोला यार हमारे आलसी एसोसिएशन का चेयरमैन और इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, तो धिक्कार है हमें यार, ऐसा चेयरमैन हमारा, कितना गलत उदाहरण सेट हो रहा है पूरे समाज में कि आलसी एसोसिएशन का चेयरमैन इतनी तेज गाड़ी चला रहा है। तो बोले ठीक है अगली मीटिंग होगी तो पूछेंगे। संडे को मीटिंग थी, एक आलसी ने दूसरे आलसी को पूछा, पूछो जरा प्रश्न यार। बोले पूछ लेंगे यार, क्या चलती है। ठीक है आलसी है, तो ऐसे करते करते कई महीने निकल गए। बोले पूछ लेंगे, चलता गया, पूछ लेंगे, कई साल निकल गया, काफ़ी टाइम निकल गया। फिर दोबारा री इलेक्शन का समय आया चेयरमैन का, भैया चेयरमैन दोबारा इसको बनना है। बोले अब तो पूछ लेगा ना, अब तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछना ही पड़ेगा। मैं बोला आपने पिछले साल की याद बात है, याद है आपको? बोले हाँ याद आया। बोले हम मार्केट में खड़े थे, बीच भरी मार्केट में, इतनी भीड़ में अपने 120 की स्पीड से गाड़ी चलाई, क्यों? बताओ क्यों? बोले बता दूंगा. बोले ठीक है बता देना. तो फिर टलता गया. तो काफी भी महीने ऐसे निकल गए. बोले उन्हें पूछना भूल गए, वो बताना भूल गया. टलता गया. तो फिर काफी समय गया. बोले बता दो अब तो, बता दो. बोले हाँ. बोले क्या बताऊँ, हाँ क्या याद आ रहा है. हाँ बोले हाँ ऐसा हुआ था यार, एक्सेलेटर पे पैर रख लिया मैंने. बोला पैर रख लिया, कौन हटाया उसको यार, ब्रेक पर. तो चलता गया गाड़ी. तो हम इसे क्या सीखते हैं कि हम कभी कभी मेरी भक्ति करना शुरू कर देते हैं, नहीं करना है तो सेवा करनी है, नहीं सेवा करनी है तो एक्सेलेटर पर पैर रख दिया. अरे कभी ब्रेक भी लगानी पड़ती है, कभी कभी एक्सेलेटर पर भी पैर रखे हुए. तो एक्सेलेटर में ऐसी भीड़ भाड़ में एक्सेलेटर में पैर रखा रहेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा. तो नियमित होना बहुत जरूरी है. हम सीधा देव स्मृति नहीं कर सकते, नहीं अब तो कोई होना नहीं, कम सोना, बस सेवा में लग रहो, मेहनत करते रहो, खुद दबा दो एक्सेलेटर जोर से. अरे आसपास देखो तो सही क्या है, और ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक लगाओ, थोड़ा ब्रेक लगाओ, गियर चेंज करो, एक्सेलेटर लगाओ, ब्रेक लगाओ, गियर चेंज करो, एक्सेलेटर लगाओ, ये गाड़ी ऐसे चलेगी आगे. और धीरे 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 हम देव स्मृति कम करेंगे और कृष्ण स्मृति को बढ़ाएंगे. तो ये हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम हमारे जीवन में कोई हो ऐसा व्यक्ति जो हमें पुश कर सके. दूसरा, जो कार्य भी हम करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें. अगर हम अपनी प्रसन्नता के लिए वो कार्य करेंगे तो हमारा उत्साह ईसीजी कर्व की तरह होगा, ऊपर नीचे. कभी हम बहुत एक्टिव हो जाएंगे, कभी सुस्त हो जाएंगे. भाई बहुत एक्टिव हो जाएंगे, कभी बहुत सुस्त हो जाएंगे. हमें अपनी सेवा की प्रशंसा मिली, रिकग्निशन मिली, उत्साह हमारा बना रहेगा. किसी ने कुछ बात कर दी, अपमान कर दी, हमारा उत्साह नीचे हो जाएगा. नहीं, अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं फिर इससे हम प्रभावित नहीं होंगे. हम कहीं और देखते हैं, हमारा अगर हमारा मन उदास है, हम भगवान के विग्रह के सामने आते हैं, मेरा मन उदास है, क्यों नाचूं? नाचूंगा, खुशी होती तभी व्यक्ति नाचता है ना, नहीं नाचता मैं. लेकिन अगर मेरा मन उदास है और मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नाचता हूं तो क्या होता है अनुभव, क्या अनुभव होता है आपको बताएंगे? हम भी प्रसन्न हो जाते हैं. इसलिए हमेशा जो हम कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद सेवा कर रहे हैं, प्रसाद कुक कर रहे हैं, सब कुछ हमें ध्यान देना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. हम प्रसाद पा रहे हैं, जीवन का कोई भी निर्णय हो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. क्या खाना है, कितना खाना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. क्या बोलना है, कब बोलना बंद करना है. क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना. क्या देखना है, क्या नहीं देखना. क्या किन भक्तों का संग करना है, किन भक्तों का संग नहीं करना. सब कुछ केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. नंबर थ्री, एकदम हम तुरंत ही सारा एक्सेलेटर को ना दबा दें, देह स्मृति कुछ रहेगी. इसलिए नियमित जीवन जिए, रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल, सही खाना, सही सोना, समय पर. तो इससे हम सतोगुण में आते हैं और सतोगुण से हम विशुद्ध सत्व में फिर आसानी से आ सकते हैं. तो इस ढंग से हम अपने इस देह स्मृति से आगे बढ़ के देह योग से हम भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं. हरे कृष्ण. किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.
धन्यवाद प्रोजी. तो इसमें मैं पूछना चाह रहा था, जैसे पिछले कई दिनों से प्रसंग चल रहा है कि प्रहलाद महाराज उनसे पूछ रहे हैं कि आप ऐसे मोटे क्यों हो, तो इसका वास्तविक उत्तर क्या है, मतलब मैंने आगे भी पढ़ा सकते हैं.
हाँ, उसका ये प्रश्न पूछा कि हम मोटे क्यों. प्रहलाद महाराज का प्रैक्टिकल प्रश्न है. और प्रभुपाद भागवत में कई जगह लिखते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति में प्रगति कर रहा है तो उसका उदर भी उन्नति नहीं करता. यानी कि भक्ति सिद्धांत महाराज भी और प्रभुपाद जी भी जब किसी भक्त को मोटा होते देखते थे तो प्रसन्न नहीं होते थे. उसका मतलब उसका भोग थोड़ा बढ़ रहा है. और साथ में प्रभुपाद ये भी नहीं देखते थे कि कोई भक्त बहुत दुबला पतला हो रहा है तभी प्रभुपाद कहते ठीक नहीं है, बिल्कुल ऑप्टिमम, ना बहुत दुबला पतला हो ना बहुत मोटा हो. तो इसका मतलब मोटा हो रहा व्यक्ति या तो कार्य ज्यादा नहीं कर रहा, मेहनत कम कर रहा है, और खाना ज्यादा खा रहा है, प्रसाद ज्यादा ले रहा है. इनका ये रीजन है, आगे जाके हम देखेंगे. ये भी रीजन है कि एक निष्क्रिय हो बैठे हैं और ये मोटे क्यों हुए. ये जो है ये पूर्ण रूप से एक अष्टांग योग का पालन करें, आप दूध की अवस्था में है, आप दूध की अवस्था है, बिल्कुल देह की कोई स्मृति नहीं है. आगे आएगा कि कोई आके देता है तो मैं खा लेता हूं और कई दिनों में नहीं है तो नहीं खाता. तो बिल्कुल देह से ऊपर है. तो ऐसा नहीं है कि ऐसी अवधूत अवस्था भी हम कॉपी नहीं करते, जस्ट एन अवधूत अवस्था, ऑलमोस्ट मैड लग रहे हैं. सो दैट वे, और आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे इस अवस्था तक ये पहुंचे. ठीक है. हाँ सर,
आपने सिंस यू हैव टच दिस टॉपिक इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अभी प्रेजेंटली वी सी अमंगस्ट ऑल ऑफ आवर लाइफ कि बहुत दिस इज व्हाट विल क्लिक एज यू नो हम एक बटन क्लिक करते हैं एंड वी गेट द रिजल्ट्स इमीडिएटली दैट्स हाउ सिंस चाइल्डहुड वी आर ट्रेंड बचपन से हमें ऐसा ही मशीन्स और डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग तो जैसे ही भक्ति के अंदर परिणाम नहीं मिलता हमें होता है कि मैं आज शुरू किया कल परिणाम मिलना चाहिए मेरे को एंड पीपल हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशन इट ऑल्सो लीड्स टू लॉट ऑफ लेजीनेस कि परिणाम नहीं मिला तो अब मैं नहीं करूंगा या मनमान ढंग से करूंगा
वेरी गुड पॉइंट
सो हाउ टू ओवरकम सच काइंड ऑफ थिंग एंड वी सी इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे अमंग्स इवन डिवोटी सर्कल्स ऑल्सो
यस यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी थैंक यू प्रभु जी का पॉइंट ये है कि क्लिकेज है इंस्टेंट हर चीज इंस्टेंट एक बटन दबाया तुरंत सामने रिजल्ट आता है और जब हम तुरंत बटन दबाएं तुरंत सेवा में रिजल्ट नहीं आता तो हम फिर हतोत्साहित हो जाते हैं सुस्त पड़ जाते हैं तो इसका क्या सलूशन है दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग है ना तो मेरे समय तो इसका यही सलूशन है कि हम किसी के संरक्षण में रहें और वो भक्त हमें पुश करता रहे और ये प्रशिक्षण की कमी है ये प्रशिक्षण की कमी है ओवर डिपेंडेंस ऑन गैजेट्स जितना अपने जीवन को सिंपल रखेंगे और क्योंकि अभी हमारा प्रशिक्षण हुआ नहीं हम तो जिस वातावरण से आ रहे हैं ब्रह्मचारी आश्रम में भी बाहर का वातावरण कितना दूषित है उसमें यहाँ आ रहे हैं तो पुराने कंसेप्ट और लाइफस्टाइल से निकलना बहुत मुश्किल है लेकिन सही ढंग से श्रवण करेंगे और संकीर्तन आंदोलन में जुड़ेंगे और कोई हमें सुपरवाइज करने वाला पुश करने वाला होगा तो इससे हम ऊपर उठ सकते हैं अदरवाइज दिस इज अ डिजीज या
सिंसियर एम्फसाइजिंग आप इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि कोई हमारा जेन में होना चाहिए पुश करने वाला मैं जो सोच रहा था अगर पूरे कम्युनिटी के अंदर ईच वन इज पुशिंग ईच अदर ओनली देन सम टाइम बिकम And he's not pushing himself. तो बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है मतलब
Obviously, इसलिए बोला कि जो पुश कर रहा है उसको खुद को पुश होना चाहिए खुद को सक्रिय होना चाहिए तभी वो दूसरे को कर पाएगा लेकिन वो बाय एग्जाम्पल कि वन शुड इंस्पायर बाय एग्जाम्पल और पुश करने वाला एक ही व्यक्ति है ऐसा नहीं कि सभी दूसरे को धक्का ही दे रहे हैं और दूसरे को अपने उदाहरण से उत्साहित कर सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप में अपने इंस्ट्रक्शंस देने वाले और पुश करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए वेरी गुड क्वेश्चन पहुंच गया बोल रहे हैं कि मन को संतुलित कैसे करें इसमें बुरे विचार और अच्छे विचार आते रहते हैं तो बुरे विचारों से कैसे अच्छे विचारों पर आए ये आपका प्रश्न है तो भगवान गीता में बताते हैं अभ्यास और वैराग्य अभ्यास का मतलब है कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस और वैराग्य का मतलब है कि कुछ चीजों को त्यागना यानी कि प्रैक्टिकल लेवल पे डूज एंड डोंट्स कुछ अपने जीवन में डूज को फॉलो करना करनीय है और कुछ अकरणीय है तो उसको करने से मन हमारा संयमित हो जाता है ठीक है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुझे तक क्या आवाज सुनाई नहीं दे रही प्रचार ही सारा था अवधूत के जीवन को कैसे समझे
निष्क्रिय थे वो नहीं चल पा रहे थे बैठे हुए थे और हम उन्हें सिद्ध पुरुष के रूप में बता रहे हैं और एक तरफ हम कहते हैं कि प्रचार ही सार है तो इसको हम किस तरह से अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से लें
हाँ बिल्कुल ठीक बात है और हमने प्रारंभ में बोला भी था कि हम इनकी नकल नहीं मार सकते ठीक है ना अगर हम इनकी नकल मारेंगे हम भी ऐसे सुस्त पड़ जाएंगे और कोई आके हमारे ऊपर मिट्टी फेंकेगा मलमूत्र फेंकेगा तो हम क्या करेंगे इनका तो पूरा देह विस्मृति हुआ पड़ा है ठीक है ना ये अवधूत की ऐसी अवधूत का मतलब है कि जो सभी नियमों से परे और आगे जाके अपनी कथा सुनाएंगे ये है ना तो उसका फिर आपको मालूम चलेगा लेकिन ये सारे के सारे जो लक्षण हैं हम श्रील प्रभुपाद जी में भी देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी निपुण हैं दक्ष हैं समदर्शी हैं बुद्धिमान हैं और प्रभुपाद जी ने कैसे उसको इस्तेमाल किया और सारे जीवों को देख रहे सकाम कर्मों में लगे हुए हैं दुखी हैं तो उनका उद्धार किया है ना तो हमारे लिए यही शिक्षा है इसमें से लेकिन ये अवधूत की अवस्था है जैसे चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु भी अवधूत होते थे मित्र प्रभु कुछ भी ऐसी लीला करते थे तो वो हमारे लिए करणीय नहीं होते ठीक है यस माता जी एक प्रश्न पूछ ली हमारी
मतलब उसमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सेवा से कई बार थोड़ा सा हट जाते हैं, मतलब कि रेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आपका क्या सुझाव
है? ये सभी भक्तों के लिए चैलेंज है कि जो मेरा शरीर थका हुआ है, ये मेरा मन कह रहा है कि वास्तव में थका हुआ है, क्या मेरे शरीर को वास्तव में रेस्ट चाहिए या मन की आलसपन है? ये वास्तव में
अपने ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर है,
सबके ऊपर चुनौती का ये विषय है। और कई बार भक्त लोग बहुत ज्यादा कर जाते हैं और कई बार भक्त लोग बहुत ज्यादा देह को आराम देते हैं। तो इसमें माता जी हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि किसी को हम कंसल्ट कर सकते हैं, या जितना हम सिंसियर होंगे भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे, क्योंकि जीवन की हर अवस्था में साधु के लोग हमारे जीवन में छोटे छोटे निर्णय तो लेंगे नहीं कि अब रेस्ट कर लो, अब उठ जाओ। तो हमें अपने अपने जीवन में खुद के अपने अनुभव से भी कई बार सीखते हैं, और जितने हम सिंसियर होते हैं परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं डिसीजन लेने में। लेकिन भक्तों का पूरा उद्देश्य ये होता है कि हर अवस्था में हम हमेशा कृष्णा भाना भावित रहें, ये प्रयास रहता है। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंद।